देवेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्च नमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलानं च सव्येषिं पढमं हवै मंगलं पढमं हवै मंगलं। पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की धर्म के प्रश्नोत्तर के रूप में आठ प्रश्नोत्तर कल तक हो चुके हैं। नौवां प्रश्न किया है, पुरातत्व विभाग के अनुसार जैन धर्म की प्राचीनता क्या है। इसके उत्तर में लिखा है, अनेक प्रसिद्ध पुरातत्व वेत्ताओं ने सिंधु घाटी की सभ्यता के काल से जैन धर्म की प्राचीनता को स्वीकार किया है। उत्खनन में प्राप्त सील नंबर 449 के लेख को प्रोफेसर प्राणनाथ विद्यालंकार ने जिनेश्वर पढ़ा है। सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो और हरप्पा संस्कृति में बहुत पुराने काल में वहां पर समाज बसी हुई थी और वहां पर आज जमीन को खोदने पर कई प्रतिमाएं निकलती हैं, प्राचीन काल का इतिहास वगैरह वहां पर खोजा जाता है। वहां पर भी ये लिखा हुआ मिला है, जिनेश्वर सील नंबर 449 के लेख को पढ़ने पर यह पता चला कि जिनेश्वर ऐसा लिखा हुआ मिलता है शिलालेख में। पुरातत्वविद राय बहादुर चंद्रा का वक्तव्य है कि सिंधु घाटी की मोहरी में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहरों में एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें मथुरा की वृषभ देव की खड्गासन मूर्ति के समान त्याग और वैराग्य के भाव दृष्टि गोचर होते हैं। हड़प्पा से प्राप्त नग्न मानव धड़ भी सिंधु घाटी सभ्यता में जैन तीर्थंकरों के अस्तित्व को सूचित करता है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक टीएन रामचंद्र ने उस पर गहन अध्ययन करते हुए लिखा है कि हड़प्पा की कायोत्सर्ग मुद्रा में उत्कीर्णित मूर्ति पूर्ण रूप से जैन मूर्ति है। भारत में सबसे प्राचीन इतिहास पढ़ने को मिलता है सिंधु घाटी में, और वहां के आधार से इस प्रकार के उल्लेख जैन धर्म के संबंध में आदिनाथ भगवान की मूर्ति इत्यादि दिगंबर मूर्ति वहां पर निकलती है। मथुरा का कंकाली टीला जैन पुरातत्व की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वहां की खुदाई से अत्यंत प्राचीन देव निर्मित स्तूप के अतिरिक्त 110 शिलालेख एवं कुछ प्रतिमाएं मिली हैं। वो अज्ञात काल के स्तूप अज्ञात काल का है। अज्ञात काल के अतिरिक्त 110 शिलालेख एवं कुछ प्रतिमाएं मिली हैं जो ईसा पूर्व दूसरी सदी से 12वीं सदी तक की हैं। ईसा पूर्व, ईसा को हुए कितने साल हो गए? 2011 साल हो गए। उससे पूर्व यानी 2011 वर्ष से पूर्व दूसरी शताब्दी यानी 200 साल को लेकर 1200 साल तक प्राचीन काल में ये शिलालेख प्राप्त हुए प्राचीन काल के 3200 बारहवीं सदी तक ईसा पूर्व बारहवीं सदी तक पीछे जाना, बारहवीं सदी पीछे ही जाने को बता रहे हैं ना, आगे नहीं आना है। ईसा के बाद की बात नहीं, पहले की बात है। लेकिन मूर्ति भी 4000 साल पहले की भी मूर्तियां मिली हैं जो खजुराहो में उसके सारे फोटोज लगे हुए हैं। नीचे लिखा है 4000 पूर्व वर्ष पूर्व की ये मूर्ति, यानी ईसा पूर्व 2000 हो गया। सभी फोटो दीवार पर विदेशी लोगों को दिखाने के लिए लगाया है खजुराहो में मध्य प्रदेश। हो सकता है वो सिंधु घाटी की मूर्तियां इतनी प्राचीन भी होती हों और वो प्राप्त हैं। पुरातत्व के विभाग के अनुसार इसकी खोज होती है तो इस प्रकार प्राप्त होता है, किंतु धर्म तो अनादि है। इसको पुरातत्व के हिसाब से खोजबीन करना एक बहुत परमाणु के बराबर की खोज है। जीव अनादि है, जीव रागादि भावों को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करता है, धर्म अनादि है। ऐसे दिगंबरत्व के साधना के बिना किसी को आज तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है, ये परंपरा अनादि है। अब भूमि को खोदने पर दिगंबर प्रतिमाएं निकली तो अधिक से अधिक 4000 साल पहले की निकल रही है। तो क्या जैन धर्म 4000 पहले था और उससे पहले नहीं था? ऐसा तो नहीं है, उसके पहले भी धर्म था। वह यदि 4000 वर्ष पूर्व जाते हैं तो महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान दोनों के पीछे हो गया, वो नेमिनाथ भगवान की तीर्थ का काल हो गया। नेमिनाथ भगवान को मोक्ष गए 86000 वर्ष हुए हैं उत्तर पुराण के अनुसार। उत्तर पुराण में लिखा है उनकी निर्वाण महोत्सव 86000 वर्ष वाला है। 86000 बहुत समय हो गया। राम का काल तो इससे और पीछे है। राम का, राम के बाद कृष्ण हुए हैं। नेमिनाथ भगवान एक ही समय के हैं, कृष्ण और नेमिनाथ भगवान। प्रश्न 10वां, वैष्णव धर्म के अनुसार जैन धर्म की प्राचीनता क्या है? अब ये जैन धर्म के शास्त्रों के आधार से या शिलालेखों के आधार से अपन कहते हैं तो शास्त्र के आधार से कहेंगे तो अनाधिकालीन है, और यदि शिलालेख चाहिए तो भूमि को खोदना या इधर उधर उल्लेखित शिलालेखों को संग्रहित करेंगे तो अधिक से अधिक 4000 वर्ष तक ऐसा आता है। उससे पूर्व की कोई शिलालेख वगैरह प्राप्त नहीं होते, मूर्ति वगैरह प्राप्त नहीं होती। इससे प्रश्न उठता है कि चतुर्थ काल में मूर्तियों को बनाने की परंपरा थी, चतुर्थ काल में भी थी, लेकिन 4000 वर्ष पहले थी या नहीं, ये कुछ भी आधार नहीं मिलने के कारण अपन ये नहीं कह सकते कि मूर्ति की परंपरा थी, क्योंकि उतनी प्राचीन यानी 6000 10000 ऐसे हजारों साल पहले की मूर्तियां नहीं मिलती। अधिक से अधिक 4000 साल पहले की मूर्तियां प्राप्त होती। इससे एक और विषय सामने आता है कि मूर्ति बनाने की पद्धति पंचम काल में जोरदार चली, क्योंकि 4000 के अंदर जो 4000 साल पहले मूर्तियां मिली वो बहुत कम मिली, यहां एक वहां एक खोजने पर मिली। किंतु आजकल पंचम काल में जो बनाई गई सबसे ज्यादा प्रतिमाएं बनी, 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक मूर्तियां बहुत बन गई, बहुत मूर्ति 10वीं शताब्दी में तो बहुत मूर्तियां बन गई, बहुत मंदिर बन गए, और कालांतर में इन मंदिरों पर मूर्तियों पर जब संकट आया तो मूर्तियों को और मंदिरों की रक्षा के लिए इनको जमीन में ढक दिया गया, क्योंकि इनको तोड़ने लगे ढाका। तो आजकल जो प्रतिमाएं ज्यादा से ज्यादा मिल रही हैं वो सभी 10वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी ऐसे शताब्दियों की मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं, मंदिर भी प्राप्त हो रहे हैं और मूर्तियां भी प्राप्त हो रही हैं। किंतु ये सभी पद्धति पंचम काल, मूर्ति और मंदिर बनाने की पद्धति पंचम काल में बढ़ गई। क्यों बढ़ी? तो साक्षात भगवान तो आज मिलते नहीं है, अरहंत भगवान आचार्य परमिष्टि मिलते हैं और साधु परमिष्टि मिलते हैं, उपाध्याय परमिष्टि भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान 25 मूल गुणों को धारण करने वाले द्वादशांग ज्ञाता मुनि महाराज भारतवर्ष में कोई भी नहीं है। 36 मूल गुण को धारण करने वाले मिलते हैं आचार्य परमिष्टि, 28 मूल गुणों को धारण करने वाले भी मिलते हैं साधु परमिष्टि, क्योंकि 36 और 28 ये सभी आचरण संबंधित हैं, किंतु उपाध्याय के जो मूल गुण हैं वो ज्ञान संबंधित हैं। उत्कृष्ट क्षयोपशम ज्ञान के धारी मुनि महाराज ही द्वादशांग के ज्ञान को हासिल कर सकते हैं, और आज द्वादशांग के ज्ञाता कोई भी मुनि नहीं है। इसलिए वो द्वादशांग का ज्ञान अन्य किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। एक कोई द्वादशांग का ज्ञाता होते हैं तो उनसे वो ज्ञान लेते हैं शिष्य और शिष्यों से फिर प्रतिशिष्य, इस प्रकार द्वादश्यंग का ज्ञान आगे बढ़ता जाता है। किंतु एक भी मुनि महाराज द्वादश्यंग के ज्ञाता न होने से आज उपाध्याय परमिष्टि उत्कृष्ट गुणों को धारण करने की अपेक्षा से नहीं है, ये अपन कह सकते हैं। यहाँ पूछा है, ऋग्वेद आदि अन्य ग्रंथों की अपेक्षा से अन्य संप्रदाय में लिखे जो ग्रंथ हैं वेद ग्रंथ, उन वेद ग्रंथों में जैन धर्म के संबंध में क्या चर्चा है? प्राचीनता की अपेक्षा से यहाँ चर्चा दी जा रही है। तो कहा है, ओम त्रैलोक्य प्रतिष्ठितानां चतुर्विंशति तीर्थंकरानां वृषभादि वर्धमानांतानां सिद्धानां शरणं प्रपद्ये। ये कहाँ लिखा है? ऋग्वेद में लिखा है। देखो कौन कौन से तीर्थंकरों का नाम आया ऋग्वेद में? ऋग्वेद में वृषभादि से लेकर वर्धमान पर्यंत 24 तीर्थंकरों को उन्होंने परोक्ष रूप से स्मरण किया। दो का नाम प्रत्यक्ष है, वृषभनाथ भगवान, महावीर भगवान, बाकी को आदि कह करके 24 तीर्थंकरों को इन्होंने स्मरण किया है ऋग्वेद में। तो इससे भी सिद्ध होता है वेद से भी प्राचीन तीर्थंकर जो धर्म के प्रचारक थे वो वेद से पहले हो चुके हैं, ये सिद्ध होता है, वेद से ही सिद्ध होता है। तीनों कालों में प्रतिष्ठित श्री वृषभ देव से आदि लेकर श्री वर्धमान स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर हैं। उन शुद्धों की शरण में प्राप्त होता हूँ। शुद्धों की शरण में प्राप्त होने का लिखा है ऋग्वेद में। यजुर्वेद में कहा है, ओम नमो अरहंतो वृषभो। अरहंत नाम वाले पूज्य वृषभ देव को प्रणाम हो, ये मिलता है। और शिव पुराण में लिखा है कि 68 तीर्थंकरों की यात्रा करने का जो फल मिलता है उतना फल भगवान आदिनाथ के स्मरण करने से होता है। देखो क्या लिखा है, किस पुराण में? शिव पुराण में। उनके यहाँ एक शिव पुराण भी है, उसमें ये उल्लेख है कि 68 तीर्थों की यात्रा करने का जो फल मिलता है वो आदिनाथ भगवान को स्मरण करने मात्र से मिलता है। तो अच्छा है ना, कहाँ यात्रा करते हुए कहाँ घूमे, आदिनाथाय नमः, आदिनाथ एक 108 बार जाप दे दो, 68 तीर्थों की यात्रा हो गई, जो फल मिलना था मिल गया। किसके अनुसार? शिव पुराण के अनुसार मिल गया। मार्कंडेय पुराण 40, 39, 41 में श्लोक नंबर होगा वो, में तीर्थंकर वृषभ देव के वर्णन में लिखा है कि उन्होंने अपने पुत्र भरत को राज्यभार सौंपा और स्वयं विरक्त हो गए। इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। किसके नाम पर? भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। इन्होंने तो ऐसा लिखा है, किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भरत क्षेत्र में अवसर्पिणी उत्सर्पिणी के काल में प्रथम चक्रवर्ती पैदा होता है उनका नाम भरत ही रहता है। भरत क्षेत्र में जन्म लेने पैदा होने से भरत ऐसा नाम पड़ता है, क्षेत्र का नाम पड़ता है। यदि अपन ऐसा कहेंगे कि भरत चक्रवर्ती प्रथम चक्रवर्ती थे और उस चक्रवर्ती का नाम देश का नाम पड़ गया। तो ऐसा यदि कहेंगे तो यह भारत देश यानी भरत क्षेत्र चक्रवर्ती से पहला नहीं था, हैं? हाँ, चक्रवर्ती से पहले इसका नाम क्या था फिर? वो तो आधुनिक ही अजनाब वर्ष नाभिराज का नाम है वो, लेकिन भारत ऐरावतोर वृद्धिरासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिणी वसर्पिणीभ्याम, ये अनादिकालीन नाम है। जम्बू द्वीप का जैसा अनादिकाल का नाम है, वैसे भरत और ऐरावत क्षेत्र का भी नाम अनादि है। अजनाब यह पर्यायवाची नाम हो सकता है, लेकिन अजनाब अगर होता तो भरत चक्रवर्ती का नाम भी अजनाब पड़ता। किंतु तृतीय काल व्यतीत होने के बाद चतुर्थ काल जब आया तो तीर्थंकर का जन्म भरत क्षेत्र में हुआ और उनसे जो पुत्र हो गए उनका नाम उस 14वें मनु ने, कुलकर ने, नाभिराज ने अपने पुत्र का नाम भरत रखा, देश का नाम ही उनको रखा, न कि उनका नाम देश को पड़ा, देश का नाम उनको रखा। इसका नाम भरत क्षेत्र अनादि से है, अनादि से। और भविष्य काल में भी जो भी चक्रवर्ती उत्पन्न होंगे उसमें जो उत्सर्पिणी या भरत अवसर्पिणी में प्रथम चक्रवर्ती रहेगा उनका नाम भरत ही होता है। ऐसा जैन शास्त्रों में चर्चा है। इन्होंने क्या कहा है उनके अनुसार है, ये शिव कौन सा पुराण, मार्कंडेय पुराण के अनुसार है, पुत्र भरत को राज सौंप कर और स्वयं विरक्त हो गए, इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये जरा वो ठीक है, हाँ ठीक है, देश का नाम राजा को रखना या राजा का नाम देश को रखना, तो भरत ऐसा नाम यदि वो रखते हैं तो भरत यह नाम अर्वाचीन हो गया, अनादि नहीं रहा। भरत क्षेत्र यह नाम अर्वाचीन ही हो गया, यानी चतुर्थ काल के प्रारंभ में इसका नाम पड़ा, भरत चक्रवर्ती के नाम के कारण से देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा हो जाएगा। किंतु ऐसा होता नहीं, भरत नाम के चक्रवर्ती इस धरती पर कितने लोग हुए हैं? अनंत लोग हुए हैं चक्रवर्ती, उन सब का नाम भरत। और ऐरावत में जो प्रथम चक्रवर्ती होता है उनका नाम ऐरावत चक्रवर्ती होता है, ये जैन शास्त्रों में चर्चा है। हाँ, सब अनादि, अयोध्या अनादि, भरत क्षेत्र का मेन नगर है अयोध्या, मुख्य नगर देश का, क्षेत्र का मुख्य नगर अयोध्या। लिंग पुराण 47:19-24 में नाभिराय को हिमालय के उत्तर दक्षिणवर्ती प्रदेश का शासक बतलाया गया है, इनके पुत्र का नाम वृषभ देव आया है, वृषभ देव की माता का नाम मरुदेवी था, वृषभ देव के पुत्र भरत थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम, सब में ऐसा ही लिखा है, सभी में ऐसा ही लिखा है, इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, भगवान के 5वें स्कंद के भागवत, हाँ भागवत के 5वें स्कंद के अध्याय 2 से 6 तक वृषभ देव का कथन है। ये भरत और ऐरावत 10 हैं ऐरावत 5 और भरत 5 ये अनादि नाम हैं। और इन दसों क्षेत्रों में जो प्रथम चक्रवर्ती होता है, दसों क्षेत्रों में इधर ऐरावत चक्रवर्ती नाम रहता है और इधर भरत चक्रवर्ती नाम रहता है। देश का नाम राजा को रखा जाता है और वो भरत क्षेत्र ही रहता है। अभी अजनाब वगैरह जो इस नाम आते हैं, वो अजनाब किसका नाम? नाभिराज का नाम होगा, ये नाभिराज का, हाँ, प्रथम अंतिम कुलकर का नाम है वो अजनाब। हाँ हाँ, बाद में भारत अजनाब, यदि ये नाम नाभिराय वृषभ तीर्थंकर के पिता का यदि नाम है और वो अजनाब कहलाता है, तो अजनाब भी जो जन्म लिए थे भरत क्षेत्र में ही जन्म लिए थे जैन परंपरा के अनुसार। हाँ, उनके पुराणों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार ये लिखा है। नक्शा थोड़ा आगे आएंगे सभी लोग, इस तरफ आएंगे तो दिखेगा। इधर मुख करके बैठे सभी नक्शा की तरफ। वही लेंगे पहला, इसको यहाँ रख दें, उठा लो। यह द्वीप ढाई द्वीप है, जैन शास्त्रों में ढाई द्वीप का मतलब मध्य लोक में जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कैसे हैं वे असंख्यात द्वीप समुद्र? ये मध्य लोक यहाँ पर है, तीन लोक में ये मध्य लोक कहलाता है, ये अधोलोक कहलाता है और सुमेरु पर्वत ये पांच दिखाए गए हैं जो मध्य लोक में हैं, ढाई द्वीप में ही हैं ये, और ये पांच हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच सुमेरु पर्वत हैं। ये पांच सुमेरु पर्वत ढाई द्वीप के अंदर दिखाए गए हैं, एक सुमेरु पर्वत ये और एक ये, एक ये और उधर दो, एक और एक, एक दो तीन चार पांच, पांच सुमेरु पर्वत हैं। किस द्वीप में? अढ़ाई द्वीप में। अब जम्बू द्वीप का क्षेत्र 1,00,000 योजन का ये कहलाता है, ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में कितने सुमेरु पर्वत हैं? एक ही है। ढाई द्वीप धातकी खंड, ये धातकी खंड कहलाता है, इसमें कितने सुमेरु पर्वत हैं? दो हैं, इधर एक है और इधर एक है। ये पुष्करार्ध द्वीप कहलाता है, इसमें कितने हैं सुमेरु पर्वत? दो। तो यहाँ जो संख्या होती है इससे डबल संख्या यहाँ होती है और इतनी ही संख्या यहाँ होती है, किसी भी नदियों की कहो, पर्वतों की कहो या किसी भी विषय में डबल डबल होता है, इससे डबल यहाँ, इतना ही यहाँ, ऐसा इसको समझना चाहिए। तो ये मध्यलोक जो है कहाँ पर है? यहाँ, ये मध्यलोक कहलाता है। ये सात राजु योजन पर प्रमाण, ये बड़ा विस्तृत शिला, ये मध्यलोक की शिला है, उसके बीचों बीच तृष्णाल में चौक चौकाकार में असंख्यात द्वीप समुद्रों की श्रेणी है। एक द्वीप ऐसा, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप फिर इसको घिरा हुआ एक समुद्र, फिर उसको घिरा हुआ एक द्वीप, फिर एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, कितने हैं? असंख्यात हैं। ये असंख्यात कौन सा असंख्यात है? व्यवहार पल्ले भी असंख्यात कहलाता है, उद्धार पल्ल भी असंख्यात कहलाता है, अद्धा पल्ल भी असंख्यात कहलाता है। तो द्वीपों की संख्या को गिनने के लिए कौन से पल्ल का उपयोग करना चाहिए? तो अद्धा पल्ल नहीं, उद्धार पल्ल का उपयोग करना चाहिए, ऐसा तिलोत्पन्नति शास्त्र में लिखा है। अद्धा पल्ल से क्या नापना चाहिए? जीवों की आयु, भोगभूमि जीवों की आयु और काल परिवर्तन आदि का जो वर्णन आता है ना, काल परिवर्तन, काल परिवर्तन को गिनते समय सागरूपम को लेते हैं अपन, तो ये अवसर्पिणी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी उत्सर्पिणी 20 कोटा कोटि सागर का है और ये कल्प काल कहलाता है। एक कल्प काल में एक अवसर्पिणी होती है और एक उस पर उत्सर्पिणी होती है। ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है और ये भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है, दोनों मिलकर के 20 कोड़ा कोड़ी, दोनों मिलकर के कौन सा काल कहेंगे उसको? कल्प काल। दोनों मिल जाए तो कल्प काल और एक और रहे तो उत्सर्पिणी कहेंगे या तो अवसर्पिणी कहेंगे। अवसर्पिणी में कितने काल होते हैं? 6 काल होते हैं और उत्सर्पिणी में कितने काल होते हैं? 6 काल। तो अवसर्पिणी के जो 6 काल हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक 6 हैं। जैसे घड़ी में ऊपर 1 2 3 4 5 6 घड़ी में देखा है ना, तो घड़ी को सामने रख करके इसको समझ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसी जो संख्या लिखी है उसके आदि में जो 3 काल हैं, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, ये तो 3 भोग भूमि के काल कहलाते हैं और बाद के 3 काल, चतुर्थ काल, पंचम काल और छठा काल, ये कर्म भूमि का काल कहलाता है। भोग भूमि के बाद कर्म भूमि आती है, किस काल में? अवसर्पिणी काल में। किंतु उत्सर्पिणी काल में इससे उल्टा, पहले कर्म भूमि आएगी बाद में भोग भूमि आएगी। तो उत्सर्पिणी के काल के संख्या को क्रम कैसे देना, काल संख्या के क्रम को कैसे देना? अवसर्पिणी जहाँ समाप्त हुआ वो छठे काल में समाप्त हो गया, अब उत्सर्पिणी काल शुरू हो गया, तो जहाँ से शुरू हुआ उसको पहला लिखना, फिर ये काल व्यतीत होने के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उत्सर्पिणी काल में बढ़ता जाएगा, ये काल बढ़ता जाता है। कैसे काल बढ़ता जाता है, किस अपेक्षा से? तो जीवों की आयु, मनुष्यों की ऊंचाई, त्रिरंचों की ऊंचाई, पेड़ पौधों की ऊंचाई और पर्वत आदि की ऊंचाई उत्सर्पिणी काल में बढ़ता जाता है और अवसर्पिणी काल में घटता जाता है। समुद्र का जो पानी है वो दिनों दिन अंदर आ रहा है और भूमि का प्रदेश कम होता जा रहा है। ये अवसर्पिणी काल होने से भूमि भाग कम होती जाती है, भूमि भाग जो है इतना सारा कम हो गया है और ऐसा ही कम होता जाएगा। लास्ट में छठे काल के अंत में इस आर्यखंड में प्रलय होगा, किस आर्यखंड में? तो ये आर्यखंड कहलाता है, ये भरत क्षेत्र है ना, वो भरत क्षेत्र इतना है, इतना ये भरत क्षेत्र कहलाता है। इसमें आर्यखंड कहाँ है? ये आर्यखंड है, इतना प्रदेश। प्रलय जो होगा वो यहाँ होगा, कितने साल होगा, कितने साल बाद? तो ये पंचम काल व्यतीत हो जाए, छठा काल व्यतीत हो जाए, अंतिम जब उन 50 दिन शेष रहते हैं छठे काल के, उस समय प्रलय प्रारंभ होगा। यानी अभी कितना समय है? 18,500 वर्ष तो पंचम काल के शेष हैं और छठे काल के 21,000 वर्ष, हजार और 21,000 कितना है? 39 तो 39 हाँ 39 39,500 वर्ष के उपरांत प्रलय होगा। बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है, लेकिन वैज्ञानिक लोग बहुत समीप ला रहे हैं उसको। वो टीवी में कुछ भी दिखा देते हैं, कुछ भी प्रचार हो जाता है और समय आने पर प्रलय नहीं होता। डेट फिक्स कर लेते हैं, कह देते हैं 2012 में ऐसा 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 होगा, पहले से कैसा होगा सब दिखा देते हैं, जैसे भविष्य में ही जाकर के शूटिंग करके लाए हो। ऐसा चलता है। ये क्यों करते हैं? इससे कमाई करते हैं। शूटिंग जो करते हैं ना, वो सीढ़ियां बहुत बिकती हैं, तो करोड़ों का व्यापार हो जाता है उनका। तो ऐसा कुछ भी बीच में उठा देते हैं बातों को, और लोग क्या हैं, जो कहते हैं उसके पीछे भागने वाले ज्यादा रहते हैं, तो उनके पीछे भाग करके उनके व्यापार के लिए सहयोग देते हैं। ऐसा वैज्ञानिक युग ये चल रहा है। कोई भी विज्ञानी ये नहीं कह सकता कि इसी काल में प्रलय होगा, किंतु महावीर भगवान की भविष्यवाणी है। कितने काल बाद प्रलय होगा? 39,500 वर्ष के उपरांत प्रलय होगा। 500 वर्ष जो बचे हैं ना, उसमें से लास्ट के उन 50 दिन निकाल दो। एक एक सप्ताह तक एक एक वर्षा होगी, 7 वर्षाएं होंगी। 7×7=49 दिन तक प्रलय होगा। कहां पर? यहां आर्यखंड में, और ढाई द्वीप में। ये कितने हैं भरत क्षेत्र? 5 हैं। एक ये और एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों क्षेत्र में, और ऐरावत में भी ये आर्यखंड है ऐरावत का, ये आसपास में म्लेच्छखंड है 5, और भरत क्षेत्र 5, ये ऐरावत क्षेत्र 5, ये हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये ऐरावत हैं। यहां पर भी सद्या पंचम काल चल रहा है, और हमारे जितने ही उम्र वाले, हमारे जितनी हाइट वाले, ऊंचाई वाले मनुष्य और तिर्यंच हैं, पेड़ पौधे भी यहाँ के समान हैं। यहाँ और यहाँ समान काल चलता है, हमेशा अनादिकाल से अनादिकाल तक चलेगा। किंतु ये विवेक क्षेत्र जो होते हैं ना, वो यहाँ हैं। ये विवेक क्षेत्र हैं। ये जो लाइन मार करके बताया गया है ना, नाम भी लिखा है और नंबर भी दिया गया है। यहाँ 5 से देखेंगे तो पता चलेगा, बाद में देख लेना, अभी नहीं। तो यहाँ पर 8 विदेह क्षेत्र हैं ऊपरी भाग में, और ये जो बीच में दिया जा रहा है ये नदी है। ये नदी कहाँ से आई? इस सरोवर से निकलकर इस समुद्र में मिल गई है, और एक नदी ये विदेह क्षेत्र के बीच में बहने वाली यहां से निकलकर ऐसे आकर के ये समुद्र में मिल गई। यानी एक नदी यहाँ दक्षिणी सरोवर से निकलकर उत्तर की ओर जाते हुए पुनः मुड़कर पुनः उत्तर की ओर जाकर, ये कौन सी दिशा? ये पश्चिम दिशा, पश्चिम की ओर आ जाती है, और ये दक्षिण से आकर, नहीं, उत्तर से आकर दक्षिण की ओर बढ़कर फिर वापस पूर्व की ओर जाकर लवण समुद्र में मिलती है। यहाँ दिशा लिखी है, देखो ये उत्तर है तो ये दक्षिण है, और ये पूर्व है और ये पश्चिम है। नक्शा में ऐसा होता है। आप जैसे बैठे हैं तो दिशा नहीं लेना, ये नक्शा तो पूर्व की दिशा की ओर लटक रही है, तो ये पूर्व पश्चिम कैसे समझे हम? तो यहाँ की दिशा को मत पकड़ो, नक्शा में जो दिशा निश्चित की जाती है वो इस प्रकार, पूर्व आपके राइट साइड में होता है, नक्शा यदि सामने है तो आपके राइट साइड में पूर्व, लेफ्ट साइड में पश्चिम, ऊपर साइड में उत्तर और नीचे साइड में दक्षिण, इस प्रकार दिशा की व्यवस्था नक्शा में रहती है। अपन किस दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं? पूर्व की ओर। परंतु नक्शा किस दिशा की ओर है? नक्शा पश्चिम दिशा की इधर हुआ, पूर्व की ओर है ना? ये पूर्व है तो नक्शा तो पूर्व की तरफ लटका हुआ है ना, और पश्चिम पीछे है, पीछे की तरफ नक्शा है क्या? नहीं, सामने। तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण और ये उत्तर। तो ऐरावत क्षेत्र किस दिशा में है नक्शा की अपेक्षा से? उत्तर दिशा में। और हम भरत क्षेत्र में यहाँ हैं, हमारी अपेक्षा से विदेह क्षेत्र किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। अब इसमें उत्तर दिशा में रहने वाले ये सारे विदेह क्षेत्र जो जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र कहलाते हैं, इनकी संख्या है 32। इस नदी के ऊपर 8 विदेह क्षेत्र हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 8 हैं, यहाँ भी 8 हैं, यहाँ भी 8 हैं और यहाँ भी 8 हैं। 8 चौक 32, 32 विदेह क्षेत्र हैं यहाँ पर जम्बूद्वीप में। इन सभी क्षेत्रों में एक एक तीर्थंकर जन्म ले लें तो 32 तीर्थंकर एक साथ विदेह क्षेत्रों में रह सकते हैं। किस द्वीप की अपेक्षा से है ये कथन? जम्बूद्वीप की अपेक्षा से कथन है। अब ये जो दिखाई दे रहे हैं ये भोगभूमि है, भोगभूमि। जम्बूद्वीप में 2 उत्तम भोगभूमि हैं, सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में, सुमेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में। ये जो गोलाकार दिखा रहे हैं ना, गुलाबी आकार का इतना चंद्राकार, ये उत्तम भोगभूमि। ये देवकुरु है और ये उत्तर कुरु, देवकुरु उत्तर कुरु, 2 उत्तम भूभूमि हैं। यहाँ पर ये भूभूमि शाश्वत है। शाश्वत का मतलब कभी भी वहां पर कर्म भूमि और फिर भूभूमि ऐसा आना जाना नहीं होता। भूभूमि के बाद कर्म भूमि, कर्म भूमि के बाद भूभूमि, ये काल परिवर्तन केवल कहाँ? 5 भरत में और 5 ऐरावत। अभी कर्म भूमि है यहाँ, किंतु भोग भूमि भी आने वाली है। कितना समय बाद आने वाली है? तो बहुत समय है अभी। अभी तो एक कितना, एक कोटा कोटी सागर वर्ष व्यतीत होना पड़ेगा, और इधर के ये 39,000 वर्ष व्यतीत होना पड़ेगा, तब भोग भूमि स्टार्ट होगी। महावीर भगवान की भविष्यवाणी क्या है? उन 50,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद लगभग यहाँ प्रलय होगा, और प्रलय यहाँ पर ही नहीं होगा, एक साथ 10 क्षेत्रों में प्रलय स्टार्ट, उसी दिन उसी समय एट ए टाइम, अंतिम उन 50 दिन तक, सात सात दिन के, एक एक हफ्ते तक एक एक बुरी वर्षाएं होंगी। वो वर्षा मालूम है कौन कौन सी? विष की वर्षा होती है, अग्नि की वर्षा होती है, तेज वायु चलती है, और तेज धूल, धूली की वर्षा, धूल ही पड़ती है, धूल ही उड़ती है, धूल ही गिरती है, ऐसा ऐसे 7 वर्षाएं होती है। इन वर्षाओं में यहाँ के जो तिरेंच और मनुष्य हैं वे सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु जब प्रलय प्रारंभ होता है तो शुरुआत में यहाँ जो विजयार्ध पर्वत है ना, ये विजयार्ध पर्वत कहाँ है? हिमवन के पहले, ये विजयार्ध पर्वत ये लिखा है, ये जो लाइन है ना पट्टी है, ऐसी पट्टी ये विजयार्ध की है, पट्टी है ढाई दिक में पूरी। यहाँ पर विद्याधर लोग रहते हैं, कहाँ पर? विजयार्ध पर्वत में। यहाँ पर हमेशा कर्म भूमि होती है, यहाँ पर काल परिवर्तन नहीं है इस विजयार्ध पर्वत में। यहाँ पर अभी भी केवल ज्ञानी आदि मुनि महाराज हैं, यहाँ पर हमेशा मोक्ष होता रहता है भरत क्षेत्र में होकर के भी, इस क्षेत्र पर कोई भी काल का प्रभाव नहीं पड़ता कि कर्म भूमि से भोग भूमि और भोग भूमि से कर्म भूमि में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी परिस्थिति यहाँ नहीं है। केवल इस आर्यखंड में है, ये भी आर्यखंड है किंतु इस आर्यखंड में यहाँ प्रलय न होकर यहाँ प्रलय होता है। इसी प्रकार ऐरावत में भी है विजयार्ध पर्वत, ये देखो ये विजयार्ध पर्वत है, ये विजयार्ध पर्वत, यहाँ प्रलय नहीं है। प्रलय तो आर्यखंड में जो ये कौन सा कलर, ये चॉकलेटी कलर, केसरी कलर, केसरी कलर कह सकते इसको, केसरी कलर जहाँ जहाँ है यहाँ प्रलय होगा। विदेह क्षेत्र में प्रलय नहीं होता, और विदेह क्षेत्र में मनुष्यों की आयु, मनुष्यों की ऊंचाई, पेड़ पौधों की ऊंचाई, जमीन घटना बढ़ना ये कुछ भी नहीं है। विदेह उसका नाम है, विदेह यानी यानी विगत नष्ट, देह को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, जिन क्षेत्रों में हमेशा होता है उन क्षेत्रों का नाम विदेह क्षेत्र। विगतः देह यत्र सर्वदा एव संसारी जीवाः प्राप्यन्ते स विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र में सदा ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। यहाँ पर मनुष्यों की ऊंचाई सदा 500 धनुष की ही होती है, इससे ज्यादा नहीं, परंतु भरत क्षेत्र में 6000 धनुष की ऊंचाई तक ऊंचाई हो जाती है जब भोग भूमि काल आता है। यहाँ पर और यहाँ पर, जब यहाँ पर 6000 धनुष के मनुष्य रहेंगे, यहाँ पर भी 6000 धनुष के मनुष्य रहेंगे। ये हम आगे बढ़ते हैं, इस चित्र का पूरा परिचय लेना है। ये चित्र जम्बूद्वीप का है, बीच वाला जम्बूद्वीप का। जम्बूद्वीप में क्या क्या है, कौन कौन सा कहाँ कहाँ है, ये देखना है। ये हो गया आर्यखंड, भरत क्षेत्र। इस भरत क्षेत्र के म्लेच्छ खंड कहाँ कहाँ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कोने में हरा हरा दिखता है ना, और ये सोर भी हरा है। ये छोटे म्लेच्छ खंड दो हैं, और ये बीच में विजयार्थ पर्वत आ गया। भरत चक्रवर्ती यहाँ से निकलकर अयोध्या से समुद्र के किनारे किनारे से आता है यहाँ से, और विजयार्थ समुद्र के किनारे किनारे से आकर के इस म्लेच्छ खंड में प्रवेश करता है। कौन सा? पश्चिम विदेह क्षेत्र म्लेच्छ खंड में प्रवेश करता है। यहाँ प्रवेश कर इसका दिग्विजय करके ये जो विजयार्थ पर्वत है, इसकी गुफा में से जहाँ पर सिंधु नदी आ रही है, गुफा में पार होकर के उस गुफा में से निकलकर उस पार जाता है, ये इस म्लेच्छ खंड में आता है। पहला म्लेच्छ खंड जीतने का ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, इन पांच खंडों को जीतकर आर्यखंड में प्रवेश करता है, अयोध्या चला आता है भरत चक्रवर्ती। तो यहाँ गुफा से बाहर आकर ये विजयार्थ पर्वत को लांग कर यहाँ आता है, यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर अयोध्या प्रवेश करता है। इस प्रकार इसमें आर्यखंड में काल परिवर्तन है, किंतु यहाँ पर काल परिवर्तन नहीं है। कहाँ पर? विजयार्थ पर्वत में कोई काल परिवर्तन नहीं, यहाँ पर काल परिवर्तन नहीं है इतने प्रदेश में, विदेह क्षेत्रों में, 32 विदेह क्षेत्रों में। और प्रत्येक विदेह क्षेत्र में जैसे यहाँ 8 हैं, तो वहां पर भी 5 म्लेच्छ खंड भी हैं और बड़ी बड़ी नदियां भी बहती हैं। यहाँ पर संक्षिप्त में दिखाया है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं, भरत क्षेत्र जैसे बड़े बड़े एक एक क्षेत्र हैं। और इन क्षेत्रों में एक एक तीर्थंकर जन्म ले लें तो 32 तीर्थंकर हो जाते एक साथ एट ए टाइम। तो यहां 32 और यहां 32, ये कौन सा खंड? नहीं, ये खंड धात की खंड, धात की खंड में 32, यहां 32 और यहां 32, 64 हो गए। यहां 32 पुष्करार्ध में, क्योंकि ये विधेय क्षेत्र का ही पूरा एरिया है। ऐसा जो ये कलर वाला आता है, डमरू के आकार का बनता है, ये देखो डमरू बजाने का, मंग्याना टाड़ सरला ये डमरू के आकार का है। ये यहां पर केवल विदेह ही है, विदेह क्षेत्र और मेरु पर्वत। तो 32 यहां, 32 यहां, ये 64 हो गए, 32 यहां और 32 यहां, ये 64 हो गए और ये 32, 160 हो गए। मिला लो 64 64 कितने, 128 और 32, 160 हो गए। टोटल विदेह क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 160 है, 160 विदेह क्षेत्रों की संख्या 160। देखो 32 32 ही मिला लो, 32 32 32 32 32, ऐसा भी चलेगा है? कितनी बार, 5 बार मिला लो, 32 32 को 5 से गुना करो, 32 को 5 से गुना कर करने पर 160 आएगा कि नहीं? बस 160 ही विदेह क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों में तीर्थंकर जन्म ले लें तो कितने तीर्थंकर जन्म ले सकते एट ए टाइम में, 160 तीर्थंकर जन्म ले सकते, 160 समोषण एक साथ देखने को मिल सकते। किंतु वर्तमान में इस विदेह क्षेत्र में 4 ही तीर्थंकर हैं, जम्बूद्वीप में एक तीर्थंकर यहां है, एक तीर्थंकर यहां, एक यहां और एक यहां, केवल 4 तीर्थंकर हैं। तो यहां 4 हैं तो यहां पर निश्चित रूप से डबल रहेंगे, कितने स्विच ऑफ करके रख दो। देखो ये कितने 4, तो यहां पर कितने 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यानी धात्री खंड की अपेक्षा से कितने बैठ गए तीर्थंकर, 8, और पुष्करार्ध की अपेक्षा से 8 तीर्थंकर हो गए। तो कितने तीर्थंकर हो गए, 16। क्षेत्र कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5, तो 4 4 5 बार, 4 5 20। आप लोग पूजा करते हैं ना मंदिर में, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु को गुणगाऊं, कहते तो रहते हैं लेकिन ये कहां गुणगा रहा हूं यही मालूम नहीं था वो कहां है यही मालूम नहीं था, मालूम पड़ गया ना। हाँ, ये सुमेरु पर्वत है 5, तो सुमेरु पर्वत की इस ओर और उस ओर, इधर 16 तीर्थंकर, इधर 16 तीर्थंकर, इधर 16 इधर 16, 32, ये यहां 32 हो गए, यहां 32 हो गए, ये भी 32 हो गए, ये भी यहां 16 यहां 16 दोनों तरफ, तो ये 32 हो गए, यहां 16 यहां 16 32 हो, इस प्रकार 160 तीर्थंकर होते। अब ये हो गए विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर। विदेह क्षेत्र जाना है ना, तो अभी से नक्शा में देख लो किस रोड से जाना है क्या है हाँ, विदेह क्षेत्र जाना हो तो अभी से देखना पड़ेगा नक्शा में, इधर से जाना है, यहां से सीधा ऐसा भी जा सकते हैं और ऐसा भी जा सकते हैं, जैसा भी जाओ आपकी मर्जी तो भरत ऐरावत क्षेत्र कितने हैं, पांच भरत पांच ऐरावत। भरत क्षेत्र में एक साथ पांच भरतों में तीर्थंकर हो जाए तो कितने हो जाएंगे? एक एक हो जाएंगे। इस भरत में एक तीर्थंकर, यहां एक, यहां एक, यहां एक, पांच तीर्थंकर हो जाएंगे। अगर पांच ये एक टाइम में होते हैं तो यहां तीर्थंकरों की संख्या पूरे चतुर्थकाल में कितने की बताई? चतुर्थकाल में कितने तीर्थंकर होते? 24, 24 तीर्थंकर होते। तो 24 तीर्थंकर एट ए टाइम में होते हैं क्या? नहीं, समय समय पर एक 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 करके 24 होकर चले जाते हैं। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में एक क्षेत्र में एक तीर्थंकर है तो दूसरे क्षेत्र में भी जरूर एक तीर्थंकर अवश्य है। एक भरत क्षेत्र खाली हुआ तो सभी खाली हो गए पांचों, और ऐरावत क्षेत्र भी सभी खाली हो गए। अभी ऐरावत क्षेत्र में भी कोई तीर्थंकर यहां नहीं है, सब मोक्ष गए हैं। 24 होते, यहां भी 24 ही तीर्थंकर होते हैं ऐरावत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में भी 24 होते हैं, यहां भी 24, यहां भी 24, यहां भी 24, यहां भी 24, इधर 24, इधर इधर इधर, सब जगह 24-24 होते हैं। लेकिन एक टाइम में एक ही होते हैं, और एक टाइम में एक होते हैं तो सब क्षेत्र में एक एक ही होते हैं। तो कितने तीर्थंकर होंगे? 10 तीर्थंकर हो गए। ऊपर पांच और नीचे पांच, 10 क्षेत्र, इधर पांच और इधर पांच, 10 तीर्थंकर हो गए। तो ये 10 उस 160 में मिला लो, 170 तीर्थंकर हो गए। तो पूरे ढाई द्वीप में मनुष्य लोक में अधिक से अधिक तीर्थंकरों की संख्या बढ़ जाए और एक तीर्थंकर पद पर एक एक तीर्थंकर बैठ जाए तो कितने तीर्थंकर बैठ सकते हैं? 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। बताया जाता है आदिनाथ भगवान का काल जब यहाँ था, अजितनाथ भगवान दूसरे नंबर के तीर्थंकर, उनके तीर्थ काल में यहाँ सभी सीट फुल थे, पांच भरत पांच ऐरावत और 160 विधि क्षेत्रों में सब में समोशरण थे, सब में तीर्थंकर थे। इस समय तो पूरे ढाई द्वीप में 20 तीर्थंकर मिलते हैं, इस समय में भी हैं, लेकिन 20 ही हैं। कैसे? तो आपने बताया ना अभी कहाँ हैं, यहाँ एक हैं, यहाँ एक हैं। जम्बो द्वीप में चारों कोने में चार तीर्थंकर, यहाँ पर भी ऐसा ही लेना, यहाँ एक तीर्थंकर, यहाँ एक तीर्थंकर, यहाँ यहाँ, ये चार, यहाँ पर भी कोने कोने में चार, एक दो तीन चार, यहाँ पर भी एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऐसे चार चार तीर्थंकर हैं। तो कितने हो गए? चार पंचे 20, 20 तीर्थंकर इस समय में हैं। लेकिन इन ये बढ़ते 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 अधिक बढ़ जाएं तो कितने बन जाएंगे? 100 विधि क्षेत्र की अपेक्षा से कितने बढ़ जाएंगे? 160, और ढाई द्वीप में पूरे 170 तीर्थंकर होंगे। चलो अब अपन तीर्थंकर की बात कर गए, अब भोग भूमि अभी जम्बूद्वीप में है क्या? नहीं है। अभी बताया था उत्तम भोग भूमि सुमेरु पर्वत के आजू बाजू में है, एक ये उत्तम भोग भूमि और एक उत्तम भोग भूमि। जम्बूद्वीप में दो उत्तम भोग भूमि है, और मध्यम भोग भूमि कितनी है? तो मध्यम भोग भूमि भी दो है, और जघन्य भोग भूमिया कितनी है? तो जघन्य भोग भूमि भी दो है। कैसे? तो उनका क्षेत्र ध्यान में रखना है, कहाँ है दिखा रहे हैं। देखो उत्तम तो दिखा दिया, ये उत्तम भोग भूमि दो हो गए। मध्यम भोग भूमि कहाँ है? तो ये लिखा है मध्यम भोग भूमि, लिखा है कि नहीं दिखता है? लिखा हुआ म भो भूमि ऐसा लिखा है ना, ये लिखा है मध्यम भोग भूमि। ये कहाँ है? तो देखो ये नदी बह रही है, ये नीला कलर का जो है ना वो नदी है, और वो हरा हरा कलर का जितना है ना ये नीचे भी दिख रहा है ये, और ऊपर नदी के चारों ओर ये 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 प्रदेश, ये मध्यम भोग भूमि का है। मध्यम भूभूमि एक यहाँ है और एक ऊपर है, ऐरावत क्षेत्र की तरफ देखो, ये मध्यम भूभूमि है, ये मध्यम भूभूमि, बीच में नदी है और ये नदियां कहाँ से निकली हैं? सरोवर से, ये सरोवर यहाँ से, ये यहाँ से और ये इधर निकली, ये मध्यम भूभूमि हुई। जगन भूभूमि भी जम्बूद्वीप में है, तो कहाँ है? तो ये जगन भूभूमि इधर है, ये मध्यम हो गई, तो ये जगन, ये और ये इतना प्रदेश और बीच में नदी, ये जगन भूभूमि का प्रदेश है। और यहाँ पर, यहाँ पर एक जगन भूभूमि ये है, ये जगन भूभूमि, अभी तो मध्यम ये बताया था, अब ये जगन है। तो जगन भूभूमि कितनी हो गई? दो, ये एक और एक, मध्यम कितने हो गए? दो, ये एक और ये एक। उत्तम भूभूमि कितने हो गए? दो, तो ये दो, मध्यम भूभूमि दो, जगन भूभूमि दो, टोटल भूभूमि कितनी है? छह। तो इनको शाश्वत भूभूमि समझेंगे। भूभूमि दो प्रकार की होती है, शाश्वत और अशाश्वत। हमारे यहाँ जो भूभूमि उत्पन्न होती है ना, हाँ, ये अशाश्वत है, और ये जो है ना, ये हमेशा ही भूभूमि रहती है, ये यहाँ पर काल का परिवर्तन नहीं है। तो शाश्वत भूभूमि कितनी है जम्बूद्वीप में? तो छह बताएंगे, शाश्वत भूभूमि छह है, दो उत्तम, दो मध्यम और दो जगन, ऐसे छह। और अशाश्वत भूभूमि कितनी है जम्बूद्वीप में? दो, एक भरत का और एक ऐरावत का। तो कितनी भूभूमियां हो गई? आठ भूभूमियां हो गई। आठ भूभूमि ही हैं, आठ से ज्यादा भूभूमि कहीं भी नहीं है। किस द्वीप में? जम्बूद्वीप में। इस जम्बूद्वीप में, पूरे में केवल आठ भूभूमियां मिलती हैं। उत्तम भूभूमि में उत्तम सुख होता है, मध्यम भूभूमि में मध्यम सुख, जगन्य भूभूमि में जगन्य सुख जीवों को होता है। अब यहाँ पर अपन और आगे बढ़ेंगे भूभूमि के संबंध में। यहाँ अगर आठ भूभूमि हैं, तो धात्की खंड में कितने होने चाहिए? तो सोलह तो होना ही चाहिए, उससे डबल, तो सोलह कहाँ? तो ये हैं, यहाँ जो बता रहे हैं ना, यहाँ पर अपन ने जगन बताया था जम्बूद्वीप में, तो सीधा आगे बढ़ना इधर, इधर ये धात्की खंड की भूभूमि, और इधर भी है, ये भी भूभूमि, और इधर भी है, ये मध्यम भूभूमि, ये भी मध्यम भूभूमि, और ये भी मध्यम भूभूमि। तो कितने हो गए मध्यम भूभूमि? एक, दो। जगन्य भूभूमि कितने? एक, दो। तो जगन्य भूभूमि नीचे के साइड में दो, इतने प्रदेश में दो, धात्की खंड में इतने प्रदेश में दो दो, तो ये एक, दो, तीन, चार हो गए धात्की खंड में, और ऊपर चार, तो आठ हो गए ना, आठ, आठ हो गए कि ना? फिर से गिनते, ये जगन भूभूमि, ये जगन भूभूमि, ये जगन भूभूमि, और ये भी जगन भूभूमि। इसी प्रकार ऊपर भी देखना है, ये मध्यम भूभूमि यहाँ जम्बूद्वीप का बताया था, सीधा चलो तो ये मध्यम भूभूमि, ये मध्यम भूभूमि, नहीं उधर नहीं जाना है अभी, ये मध्यम भूभूमि, ये मध्यम भूभूमि, ये मध्यम, ये जगन्य भूभूमि, और सीधा इसके सीध में ये जगन्य भूभूमि। तो जगन्य भूभूमि कितने हो गए? एक, दो, तीन और ये चार, और मध्यम भी चार, जगनचार, मध्यमचार आठ और सुमेरु पर्वत के, सुमेरु पर्वत धातुकी खंड में दो हैं, एक ये है और एक ये है। इसके आसपास में दो दो उत्तम भोगियों होती हैं, जैसा यहाँ सुमेरु पर्वत के आसपास दो हैं, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर, ऐसे चार कितनी भोग भूमियां हो गई, चार उत्तम, चार मध्यम, चार जगन, बारह हो गई। तो होना कितनी चाहिए, सोलह होना चाहिए। और कहाँ से लाएंगे, तो और ढूंढो वहां कहाँ है। ये तो शाश्वत हो गई, कितनी, ये तो शाश्वत भोग भूमियां हो गई धातुकी खंड में, बारह शाश्वत हैं। और अशाश्वत को और मिला लो, भरत ऐरावत, भरत क्षेत्र कितने हैं, दो हैं धातुकी खंड में, कौन कौन से, ये एक और एक, यहाँ पर एक अशाश्वत भोग भूमि और यहाँ पर एक, तो ये दो हो गए। ऐरावत क्षेत्र की तरफ ही देखो, ऐरावत क्षेत्र धातुकी खंड में है, ये एक और एक, ये अशाश्वत भोग भूमि कितनी, चार, नीचे दो ऊपर दो, शाश्वत कितनी, बारह, अशाश्वत कितने, चार, कितने हो गए, सोलह हो गए, बराबर सोलह हो गए। यहाँ पर कितने थे, आठ थे, आठ से डबल हो गए कि नहीं, हो गए, ये करेक्ट संख्या है, यहाँ से डबल आना चाहिए, तो ये करेक्ट संख्या बन गई। अब यहाँ पर बढ़ते हैं, कौन सा क्षेत्र है, ये पुष्करार्ध द्वीप है, और ये क्या है, मानुष्योत्तर पर्वत है। मानुष्योत्तर पर्वत के उस पार क्या है, बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों में कौन रहते हैं, कुमनुष, त्रिरंच रहते हैं, किंतु वो असंख्यात भोग भूमि मध्यम उत्तम जगन्य, इसमें से कौन है, जगन्य, ये ध्यान में रखना है। जगन्य भोग भूमियों की संख्या बहुत ज्यादा है, मध्यम भोग भूमि बहुत कम है और उत्तम भोग भूमि भी बहुत कम है, समान संख्या में उत्तम और मध्यम, किंतु जगन्य भोग भूमियां बहुत हैं। ढाई द्वीप में जगन्य भोग भूमियां कितनी है बताओ, यहां चार तो यहां आठ, नहीं जगन्य भोग भूमि, यहां दो, यहां दो तो यहां चार, यहां चार तो यहां भी चार, चार चार आठ नौ दस, दस शाश्वत जगन्य भोग भूमि ढाई द्वीप में है। ढाई द्वीप में शाश्वत जगन्य भोग भूमि दस हैं, दस ही हैं, किंतु असंख्यात द्वीप समुद्रों में जितने द्वीप हैं वो सब जगन्य भोग भूमि हैं। अंतिम द्वीप और अंतिम समुद्र को छोड़ो, अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप, कैसा अंतिम, ऐसे असंख्यात होते गए हैं, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप, कितने जाओ ऐसे जाओ, कितना है, एक राज्य तक जाओ, एक द्वीप एक समुद्र ऐसा होता हुआ गया है, ऐसा ही ये श्रेणी बहुत बड़ी बन जाती है। ये सब मध्य लोक है और ऐसे गोल गोल हैं सभी, विश्वास होता है। विश्वास होता है, इतना सारा हो सकता है, ऐसा होता है आप लोगों को, क्या फालतू कथन है ये सब। तीर्थंकर की वाणी है, वो असत्य नहीं हो सकता, और देखना ही चाहते हैं तो आप जा करके देख के आओ। और मध्य लोक को घूमना तो संभव नहीं है, मनुष्य शरीर को लेकर ढाई द्वीप के बाहर तो हम जा ही नहीं सकते, इसके भीतर ही रहेंगे, ये डाइवेक के बाहर नहीं जा सकते। प्रेजेंस जा सकता है परंतु मनुष्य नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? वहां जाके गड़बड़ करेगा। वहां तो कल्प वृक्ष हैं, वो तोड़ तोड़ करके लाएगा इधर। इसलिए सृष्टि ने ये नियम बनाया है, कर्म भूमि के मनुष्यों को इधर आने नहीं देना है। वो यहां चोटी तक जा सकता है, चोटी से बाहर एक कदम भी नहीं रख सकता। पर्वत उतरना तो दूर, उसके शिखर से यानी लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद जैसे सीता नहीं आ पा रही थी, या कौन रावण नहीं आ पा रहा था, वैसे है वहां कुछ ऐसा। बरमूडा ट्रायंगल है, मालूम है बरमूडा ट्रायंगल क्या होता? अभी भी है, अमेरिका से समुद्र के अंदर लगभग 2,500 किलोमीटर अंदर जाने के बाद एक त्रिकोण आकार का प्रदेश है समुद्र में, और वो लाखों किलोमीटर का क्षेत्रफल है उसका। उसके भीतर जो भी जाता है गायब होता है, वापस नहीं आता। और अंदर क्या है आज तक वैज्ञानिकों ने खोज नहीं कर पाए, वहां जा ही नहीं सक रहे कोई ही। त्रिकोण आकार का लक्ष्मण रेखा है वहां, विज्ञानी नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी नहीं जा पा रहे हैं। जो जाते हैं वापस नहीं आते। 6-6 विमान गए थे खोज करने के लिए ऊपर से, और विमान वहां पर पहला विमान पहुंच गया और वायरलेस कट हो गया, वैसा ही जाता रहा, और ये भी आते रहे पीछे से। उसके अंदर जाते ही सब कट हो जाता है, कोई भी संपर्क पीछे से नहीं कर सकते। और क्या हो गया, खोजने के लिए गए थे और 6 विमान चले गए, वो खोजने वाले भी नहीं आए और विमान भी नहीं आया। अब गिरता है या उसका क्या होता है ये कुछ भी पता लगा नहीं पा रहे। ये भी तो एक मानसोत्तर पर्वत है, हा? और ये ढाईदीप के अंदर है, भरत क्षेत्र के अंदर है, देखने को प्रत्यक्ष मिल रहा है। तो यहीं पर हम इतना अद्भुत शक्ति देख रहे हैं, जा नहीं सकते तो मानसोत्तर पर्वत पर कितनी अद्भुत शक्ति होगी। चारों ओर से बंधित है वो, कहीं से भी गुजरो आप जा नहीं सकते उस पार। उधर जगन भोग भूमिया है, त्रिरेंज है, और वो कम से कम भी उनकी आयु एक पल की है। ऊंचाई बड़ी बड़ी ऊंचाई है उनकी, आदिनाथ भगवान के काल में आदिनाथ भगवान की ऊंचाई जो थी ना उससे ज्यादा, यानी 500 धनुष से ज्यादा एक हाथी रहेगा। हाथी मनुष्य ऊंचाई रहता है, तो उस भोग भूमि में हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, गाय भी हैं, बैल भी हैं, पक्षी भी हैं, यानी जलचर नहीं है, थलचर सभी हैं और नवचर सभी हैं जगन भोग भूमि में। और वहां पर उन जीवों को गुणस्थान कितने हैं बता पाएंगे? सुबह बताया था भोग भूमि में उधर त्रिवेंशों को कितने गुणस्थान है? 5। भोग भूमि में पंचम गुणस्थान वर्ती हो सकते हैं, तो सैमी हो गए वो भोग भूमि में। भोग भूमि के जो सैमी बनते हैं क्या? देवगति के, नरक के, भोग भूमि के, कुभोग भूमि के, म्लेच्छ खंड के, ये सब सैमी बन सकते हैं क्या? सैमी नहीं बनेंगे। तो गुणस्थान कितने होंगे? गुणस्थान कितने नहीं, क्या समय दृष्टि नहीं हो सकते? हाँ, सभी भोग भूमि, कुभोग भूमि, म्लेच्छखंड छोड़ो, वहां पर एक ही गुणस्थान है। 850 म्लेच्छखंड हैं, लेकिन सभी वहां पर रहने वाले जीव त्रिरेंच और मनुष्य प्रथम गुणस्थान वाले ही रहते हैं, एक से ज्यादा गुणस्थान वहां नहीं है जीवों को। किंतु सभी भोग भूमिया, असंख्यात भोग भूमि में वो त्रिरेंच 4 गुणस्थान वाले भी होते, पहला गुणस्थान भी हो सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, चार गुणस्थान है। यहां पर भी जो भोग भूमिया है यहां पर भी चार ही गुणस्थान है। पांचवा गुणस्थान कर्म भूमि के जीवों को ही होता है, ये ध्यान में रखना है। किन जीवों को? कर्म भूमि के जीवों को ही केवल पंचम गुणस्थान होता है। ये हो गया। अब अपन इसको पूरा समझना है, टाइम तो है अभी। विदेह क्षेत्र का परिचय हो गया, भोग भूमि का परिचय हो गया, अब क्या बचा? अब पर्वतों का परिचय लेते हैं। ये कौन सा पर्वत? हिमवान पर्वत। उस भूमि में जो पैदा होने वाले मनुष्य और त्रिरंश होते हैं उनका शरीर भोग के योग्य ही होता है। उस शरीर में संयम को धारण करने की शक्ति नहीं होती है। देखो अपन श्रावक हैं, जल को छान कर पीने से, जीवों की रक्षा करने से, देख कर चलने से हिंसा नहीं होती। कौन सी जीव की हिंसा नहीं होती? त्रस जीव की। और भोग भूमि में त्रस जीव वैसे ही नहीं है, तो पंचम गुण स्थान होना चाहिए था, क्यों नहीं? विकलत्रय नहीं है भोग भूमि में कहीं भी, तो पंचम गुण स्थान तो इसे बताना चाहिए था, हिंसा होती ही नहीं। तो ऐसा नहीं, जीव हो और उन जीवों की हिंसा ना हो, ऐसा प्रयत्नशील होकर के चलना, उठना बैठना, खाना पीना, ये जो कार्य होते हैं ये पाप त्याग के कार्य हैं, इसको पंचम गुण स्थान कहते हैं। श्रावक धर्म त्रस जीवों के रक्षा से है और कर्म भूमि में ही है। भोग भूमि के श्रावकों को उनको श्रावक भी नहीं बता सकते, गृहस्थी बता सकते, क्योंकि श्रावक का अर्थ होता है श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। क्रियावान यानी चारित्रवान, चारित्रवान यानी संयमी। कैसे संयमी? एक देश संयमी। और कैसा त्यागी? त्रस जीवों का त्यागी, त्रस हिंसा का त्यागी, ऐसा अर्थ होता है। तो भोग भूमि में त्रस जीवों की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करना संभव नहीं है, जीव ही नहीं है तो क्या रक्षा करेंगे। तो उनका उठना बैठना इत्यादि असंयम पूर्वक वैसे ही नहीं रहता त्रस जीवों की अपेक्षा से। फिर भी चौथा गुणस्थान है, उनका शरीर संयम पालन करने लायक नहीं होता, उनको भूख प्यास आदि। अष्टमी चतुर्दशी को आप एकासन उपास वगैरह भी करते हैं, भोग भूमि के जीव वो नहीं कर पाते, स्वर्ग के देव भी ये नहीं कर पाते, नरक में भी ये नहीं कर पाते, तो इसलिए पंचम गुणस्थान नहीं है। बारह व्रतों को पालन करना पड़ता है श्रावक को, तब पंचम गुणस्थान होता है। तो बारह व्रत कौन कौन से? श्रावक के बारह व्रत, पांच अनुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षा व्रत। तो अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, भोग भूमि के जीव ब्रह्मचर्य व्रत ले ही नहीं सकते। वो जो वहां का शरीर मिला है ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के लायक ही नहीं, परिणाम इतने उनके मोम की तरह होते हैं, पिघलता है, कठोर नहीं रह सकते। कर्म भूमि के जीव पुरुषार्थ पूर्वक कठोर रहते हैं, जैसा शरीर वैसा मन। तो वहां पर शरीर जैसा है वैसा ही मन है, मन चंचल रहता है, तो मन को कंट्रोल करना भोग भूमि के जीवों को संभव नहीं, कर्म भूमि के लोगों को संभव है, इसलिए पंचम गुण स्थान होता है, ये कारण है। देवगति में भी ऐसी, देवगति भी पंचम गुणस्थान नहीं है, देवों को अधिक से अधिक चार ही गुणस्थान। पहले स्वर्ग से लेकर 16 स्वर्ग, ऊपर क्या है नौ ग्रहवेग तक, पहले स्वर्ग से लेकर नौ ग्रहवेग तक मिथ्या दृष्टि देव भी होते हैं और सम्यक दृष्टि देव भी होते हैं। किंतु अनुदिश में पांच अनुत्तर विमानों में यहाँ पर नियम से सम्यक दृष्टि देव ही होते हैं, सभी सभी सम्यक दृष्टि। नीचे सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी। नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर विमान में सम्यक दृष्टि ही होते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। किंतु देवों को मिथ्या तो त्याग कर सम्यक दृष्टि बनना संभव है, किंतु भोगों को त्याग कर संयमी बनना संभव नहीं है। उनको चारित्र संभव नहीं है। सम्यक दर्शन संभव है, सम्यक ज्ञान संभव है, किंतु सम्यक चारित्र संभव नहीं है। सम्यक चारित्र कहाँ कहाँ संभव नहीं, तो देखो भोग सभी भोग भूमि में और सभी म्लेच्छ खंडों में, और कहाँ, और सभी कुभोग भूमि में। अच्छा, कुभोग भूमि का बताया नहीं, कुभोग भूमि कहाँ रहती है? लवण समुद्र में। कितने होती है? 48। और कहाँ हो रहती है ढाई द्वीप के अंदर कुभोग भूमिया? कालोदरी समुद्र में। कितने? ये कालोदरी समुद्र लिखा है ना, कालोदरी समुद्र, ये कालोदरी समुद्र है और ये लवण समुद्र है। यहाँ पर दो तट हैं, एक तट इधर का कहलाया और एक तट उधर का कहलाया। तो इस तट पर एक दो तीन चार ऐसे छोड़ छोड़ कर 24 कुभोग भूमिया हैं, और उनमें कुछ छोटे भी हैं और कुछ बड़े भी हैं। जगन्य मध्यम उत्कृष्ट रूप से क्षेत्रफल छोटे बड़े भी यहाँ पर हैं। हाँ, यहाँ यहाँ दिखाया, दिखता है, ये कुभोग भूमिया हैं। तो ये संयोजन क्षेत्रफल का है, और ये 50 योजन वाला है, और ये 25 योजन वाला है, और ये 55 योजन वाला है। कितने प्रकार के हैं? 50, 100, 25, 55, चार प्रकार के। क्षेत्रफल की अपेक्षा से चार प्रकार के हैं। तो यहाँ पर ये समुद्र में ही केवल है। कुभोग भूमिया जो होती हैं वो नियम से समुद्र में होती ही ध्यान में रखना है। भोग भूमिया जो होती हैं वो भूमि पर द्वीपों में, इन द्वीपों में भोग भूमिया द्वीपों में, और कुभोग भूमिया समुद्रों में। समुद्र में जो टापू होते हैं, टापू छोटे छोटे ऐसे टापू, ये टापू के समान है ना टापू। तो अपने भरत क्षेत्र ये है, यहाँ से बहुत पास है कुभोग भूमि, जाकर के एक बार देख सकते। 500 धनुष के मनुष्य हैं, उनका शरीर मनुष्य का ही शरीर जैसा है, परंतु मुख जो रहेगा वो त्रिंच के आकार से, पक्षियों के आकार से, बंदर के आकार से, हाथी के आकार से, गाय बैल भैंस हर प्रकार, गोबड़ गोबड़ के मुख वाले भी होते हैं। यहाँ दिखाए देखो, ये हाथी के मुंह वाले हैं, ये भैंस के मुंह वाले हैं, ये बैल के मुंह वाले हैं, और ये भेड़ के या बकरी के मुंह वाले हैं, और ये सिंह के मुंह वाले हैं, नहीं कुत्ता कुत्ते के मुंह वाले हैं, देखो मनुष्य, और ये सिंह मुंह वाले, और ये गोबड़ है देखो, ये गोबड़ मुंह वाले, और ये मगर मगरमच्छ के मुंह वाले, और ये बंदर के मुंह वाले, ये कौवे के मुंह वाले, ये कुत्ते के मुंह वाले। इस प्रकार से जितने प्रकार के तिरंच है ना, मुंह तो तिरंचों के आकार से, हाथ पांव आदि सभी मनुष्यों के आकार से वहां होता है। हा? एक पैर वाले भी होते हैं, हाँ एक पैर वाले, एक टांग वाले भी होते हैं, जैसे यहाँ बताया होगा, कहीं नहीं बताया, एक एक पैर वालों को नहीं दर्शाया, कहाँ? हाँ ये है ना, ये देखो एक पैर वाले, इनका मुंह तो मनुष्याकार है किंतु टांग एक है। देखो ऊपर ठीक मिला, नीचे ठीक मिला, ये कर्म का फल है। नीचे तो ठीक नहीं मिला, ऊपर ठीक मिल गया। ये कुबो भूमिया, यहाँ पर इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 500 धनुष की, यानी 2500 फुट ऊंचे रहते हैं ये मनुष्य। और फिर इतने मनुष्य ही इतने ऊंचे हैं, तो ये द्वीप कितने बड़े होंगे? योजनों में बड़े हैं, तो 55 योजन, 100 योजन, ये कितना बड़ा है? देखो हाईएस्ट है ये चारों दिशा में चार हैं। देखो एक दो तीन और चार, चार दिशा में चार, 100 योजन के कुबो भूमिया है। एक योजन का 4000 मील होता है, एक योजन का, तो 100 से गुना करो कितना आया? 4000 को 100 से गुना करो, 5 जीरो आ गए और 4 आ गया, यानी 5 लाख, 5 लाख मील का विस्तार वाला गोल, 5 लाख मील गोल विस्तार वाला ये वो है क्षेत्रफल वाला द्वीप है। भरत क्षेत्र से बहुत पास है हम लोगों को यहां से यहां, लेकिन जा नहीं सकते देखने के लिए, कैसे जाएंगे? दक्षिणी ध्रुव को पार कर ऐसे सीधा जाना पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने प्रयत्न किया था दक्षिणी ध्रुव को लांग कर ऐसे सीधा हम आगे बढ़ करके देखें वहां पर क्या है। तो 4-5 वैज्ञानिक ऐसे थे जो देखने के लिए चले गए, और ऊपर बताया जाता है 40,000 किलोमीटर तक चले गए और कुछ भी नहीं मिला। बर्फ के बड़ी बड़ी दीवाले हैं, दीवालों पर चलते 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 पहुंच गए, फिर भी छोर नहीं दिखा, तो लौट करके आ गए वापस, खोज करने के लिए गए थे। किंतु पृथ्वी को गोल बताने वाले ऐसा, और दक्षिणी ध्रुव के पार उत्तरी ध्रुव के पार कुछ नहीं होता ऐसा कहने वाले, उन वैज्ञानिकों की खोज को प्रचार में नहीं लाया ऐसा भी बताया। अब क्या करेंगे? ऐसा होता है, देखो वैज्ञानिकों में भी तो है ना 5 मिनट अभी। इसको पर्वतों को देखते हैं, पर्वत कितने हैं? इधर 3 पर्वत हैं, सुमेरु पर्वत के इस तरफ, ये सुमेरु पर्वत हुआ, ये 1 लाख योजन विस्तार वाला है, और ये निषद पर्वत है, ये महाहिमवान पर्वत है, और ये हिमवान पर्वत है। शास्त्रों में नाम दिया है हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ये 6 पर्वत हैं। इनको कुलाचल पर्वत नाम है, कुलाचल पर्वत 6 पर्वत, और इन महा 6 पर्वतों में एक एक के ऊपर एक एक सरोवर भी है। देखो हिमवान पर्वत पर पद्महृद सरोवर है, महाहिमवान पर्वत पर महापद्म सरोवर है, पद्म महापद्म तिगिंच केसरी पुंडरीक महापुंडरीक, इतने सरोवर हैं, उनके नाम हैं। ये सब तत्वर सूत्र में आया है 3रा अध्याय। तो ये यहाँ पर 6 हो गए, पर्वत कितने हो गए? 6, सरोवर कितने हो गए? 6, और एक एक सरोवर से कितनी नदियां निकली हैं? तो ऐसा निकालना चाहिए, इससे तो 3 और इस अंतिम से 3 और बाकी से 2-2 नदियां निकली हैं, बाकी से 2-2। देखो इस सरोवर से कितनी है? 2, एक ऊपर और एक नीचे इधर साइड में आई, इससे भी 2, एक इधर और एक इधर, इससे 3, एक पीछे से और दो आगे से, ये गंगा नदी है और ये सिंधु नदी है, ये भरत क्षेत्र की नदियां कहलाती है। इधर तीन नदी, इधर तीन नदी, और दो दो कितने हैं, कितनी बार, एक नहीं नहीं एक दो और एक दो, दो दो, दो चार आठ, आठ और वो छह, चौदह, चौदह महानदियां हैं, ये महानदियां कहलाती हैं। चौदह महानदियां हैं, चौदह गुणस्थान कितने हैं, चौदह नदियां कितनी हैं, वो भी चौदह। पर्वत का हो गया, अब क्या बचा है इसमें, सब हो गया, पर्वत, सरोवर, नदी, विधि क्षेत्र, भरत क्षेत्र, काल परिवर्तन, भोग भूमि, कुभोग भूमि, कर्म भूमि, सब हो गया। जानकारी मिल गई ना, दिमाग में बैठा क्या नहीं बैठा, इसको बिठाना पड़ेगा, नहीं तो विधि क्षेत्र कैसे जाएंगे। नक्शा सामने होना चाहिए। अब ये तीन लोक का वर्णन देखेंगे, कल देखेंगे, हो गया जिनवानी।